نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ سواد کس طرح انسان کی انا اور اس کے اندر اٹھنے والی ضد جو حق بات کو سننے کے بعد پیدا ہوتی ہے اس کو دبانے والی صورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ بنا دیا جائے. ہر دور میں لوگوں کو یہ مشکل لگا کہ صرف ایک اللہ کو پکارا جائے. یاد رکھیے کہ اللہ کو پکارنا انسان کی فطرت میں ہے. شیطان جو چیز مشکل بنا دیتا ہے وہ صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے. اس کا فرق نوٹ کریے تو آپ کو انسانی زندگی میں بھی بہت مثالیں دکھیں گی. وہ لڑکیاں جن کی عادات بگڑ چکی ہوتی ہیں ان کو شوہر کے ساتھ رہنا برا نہیں لگتا لیکن صرف ایک شوہر کے ساتھ رہنا برا لگتا ہے. اور یہی مثال مردوں میں بھی آتی ہے. تو دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ خیانت کرے فلرٹ کرے تو وہ جو چاہے چاہے اس کی مرضی, لیکن اللہ کے معاملے میں انسان کو بہت سنجیدہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان کی مثالیں دیکھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت زیادہ دیتا ہے آزمائش بھی اس کی آتی ہے, اور نبی نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے فیصلوں پر اپنا اختیار نہیں رکھتے. آخر میں جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ حضرت سلیمان کی اپنے گھوڑوں کو اللہ کی چیز کے راستے میں رکاوٹ بننے کی وجہ بناتے ہوئے راستے سے ہٹانا تھا. یہ چیز مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں ڈھونڈنی ہے کہ میں کیا چیزوں کو اپنے راستے سے ہٹاؤں کہ میں بھاگ سکوں. چل رہی ہوں تو دوڑوں, دوڑ رہی ہوں تو اور تیز دوڑوں, اور ایک ایک اس ہرڈل کو اتارتے جائیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے جائیے کہ میرے رب میرے لیے اپنی محبت سب سے پیاری محبت کر دے, تیری محبت سب سے زیادہ اور تیرا خوف سب سے زیادہ. جب یہ کیفیت آتی ہے نا تو اسی کو پھر آپ تقویٰ کے مختلف درجوں میں ڈھالتے ہیں. پھر انسان کو ہر چیز اللہ کے حکم سے ایک اور ہی اینگل سے دیکھنے لگتی ہے. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کیا ان کا عجیب صبر تھا اور پھر کیا اللہ کی ان کے اوپر کرامتیں تھیں. نہ کسی نے صبر ایوب کیا اور نہ ایوب کی طرح اس پر سونے کی ٹڈیاں برسی اور نہ اس کی گئی ہوئی جوانی واپس آئی اور اس کو اللہ نے پھر مال اور اولاد دیے. تو بہت بڑی چیز دیکھنے والے آج کے سبق میں کہ صبر کے بعد اللہ صرف وہی چیز نہیں اس سے بھی اچھی چیز دیتا ہے. شرط ایک ہے کہ انسان عبد بن کر رہے اور اللہ کا بن کے رہے. وہ دعا اپنی لبوں پہ رکھیے ان پاروں کو پڑھتے ہوئے جو پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے سیکھی تھی کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک واذا قررت عیون اہل الدنیا من دنیاهم فقررینی من عبادتک. اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے, مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے, دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے, اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ. جس کو اس دعا کا یقین ہو گیا نا پھر وہ کبھی پیچھے نہیں ہوگا, اور حضرت ایوب کو اس کا یقین تھا. پھر دوسری چیز ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں کہ آخرت کے گھر کی یاد کے لیے خالص ہونا اس سے کیا مراد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا اخلصناہم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. انبیاء کرام کے ساتھ انیوژل حالات کیوں بنے, اللہ نے ان کی مدد کیوں کی, کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو آخرت کے گھر کے لیے تیار کیا ہوا تھا. ہم جس اہتمام سے دنیا کے گھر بساتے ہیں نا اور ان کو دیکھتے بھالتے ہیں, اور جب یہی چیز آخرت کے گھر کی میں ڈھل جاتی ہے تو دنیا صرف گزارے کی رہ جاتی ہے اور اصل اسباب آخرت میں جمع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جنت کے دروازے کن کے لیے کھلے ہوں گے اور جنت میں پانے والی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا جھلکیاں دی ہیں, اور اسی طرح پھر جہنم کا آنکھوں دیکھا حالات لگتا ہے. اتنی زبردست آیتیں ہیں कैसे लगता है कि किसी विंडो में से खड़े आप जरूर देख रहे हैं अगर आप खुद वहां मौजूद नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि इतने प्यारे बंदों के तस्करे के बाद इब्लीस का तस्करा, कि जिसने तकब्बुर किया और अपने आप को बड़ा बनाया, अकल को इस्तेमाल किया अल्लाह के हुक्म के आगे। याद रखिए कि अकल का इस्तेमाल गैर मशरू है जब अल्लाह के हुक्म के आगे किया जाए। अल्लाह किसी काम का हुक्म दे और आप अकल के घोड़े दौड़ाएं, समझ लीजिए कि आपने अकल का गैर शरई इस्तेमाल किया, और फिर वो अकल सलीम नहीं रहती बल्कि वो होशियार अकल बन जाती है। और इस तरह से फिर हम देखेंगे कि तकल्लुफ करने वाले कौन होते हैं। बहुत सिंपल आयते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल की तख्तियों पे लेने वाली। तो आइए आज के सबक का आगाज करते हैं हजरत अय्यूब के जिक्र से। और इनके जिक्र करते वक्त जरूर दिल में इनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह इन पर अपनी रहमतें कर, कि जिनका तू बार बार जिक्र कुरान में करता है यकीनन ये बहुत बड़ी शख्सियत होंगी। तसव्वुर में भी रखा करें कि ये नबी अगर आज के दौर में होते या हों तो इनके साथ क्या मामला किया जाता। आयत 41, वस्कुरा बदना अय्यूब, और जरा याद तो कीजिए हमारे बंदे अय्यूब को। आप नोट कर रहे हैं इन आखिरी पारों में वस्कुर का लफ्ज, जिक्रा का लफ्ज, फिर मुखलसीन का लफ्ज, फिर इसी तरह से मुहदरीन का लफ्ज कसरत से आ रहा है। ऐसे लगता है कि आप कुरान का वो हिस्सा चल पड़ा कि जिसको आप बस ये कह सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर्स हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिमाइंडर्स देते हैं कि देखो सोच लो, भूली बातें वापस कर दो, जहन की तख्तियों को बदलो, तुमने अपने आप को किन चीज़ों में लगा रखा है, किन चीज़ों में खपा लिया है, ज़रा इन चीज़ों से अपने आप को पाक करके देखो कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत हस्तियां दुनिया में भेजी थी। तो वज़कुर से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के जिक्र करते जाओ, वजीफे करते जाओ, बल्कि इससे मुराद है कि नसीहत लो, क्योंकि वज़कुरु अमर है जिक्रा से। ठीक है, तो गोया के हमें आपको दावत दी जा रही है कि हम सब नसीहत लेने के लिए हजरत अय्यूब की कहानी सुने। यहां से आपको स्टोरी टेलिंग का भी थोड़ा सा एक अंदाजा मिलेगा कि आमतौर पर कहानियां कौन सी होती हैं, वक्त गुजारी की होती हैं, फिक्शन होता है, लेकिन अंबिया कराम की स्टोरी ऐसे लगते हैं जैसे एवर न्यू है, कभी पुरानी नहीं होती। और अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत कम है कुरान में, तो आप कह सकते हैं कि ये कभी कभी ब्रॉडकास्ट होने वाली स्टोरी है। तो क्या है स्टोरी, आइए देखते हैं। इस नाद रब्बहु, जब इसने पुकारा अपने रब को। मैंने इसका ये तर्जमा क्यों नहीं किया कि जब पुकारा इसको इसके रब ने, तो अब आपको इसका जवाब याद हो चुका होना चाहिए। रब्बहु, रब्बा पे जबर ने साबित किया कि पुकारा जिसको वो जात रब थी। रब का लफ्ज जहां एक किस्म का मफूल भी या मफूल बन रहा है, तो कहा कि जब उसने पुकारा अपने रब को। नोट कीजिएगा, किसी के रब को पुकारने से वो मोहब्बत नहीं आती। रब्बे मोहम्मद भी कह देना तो वो बात नहीं बनती, जो रब्बी, रब्बना, अल्लाहुम्मा। तो पहली बात तो नोट कीजिए कि सिर्फ रब को पुकारें, आपका अपना है वो, डायरेक्ट डायलिंग है उसके साथ। बीच के सबके लाके हटाकर अदब और इज्जत के साथ जब रब को पुकारते हैं तो आपको जो मोहब्बत महसूस होती है वो इसके बगैर नहीं हो सकती। क्या पुकारा? अन्नी मस्सनिय शैतानु, बेशक मुझको छू लिया है शैतान ने, बी नुस्बिन, शदीद बीमारी के साथ, व अजाब, और तकलीफ के साथ। एक स्ट्रेच में क्या होगा, जब इसने पुकारा अपने रब को कि मुझे शैतान ने शदीद बीमारी और तकलीफ में मुबतला कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा, आयत 42, उरकुद बिरिजली का, जरा अपना पाँव तुम जमीन पर मारो। और कुछ रा काफ दाल से रिक दुन, मारना, टैबिंग, टैप करना, रिजल पाँव, अपने पाँव को या अपनी एड़ी को जरा जमीन पे तो मारो। हाज मुख्तसलुम बारिदुं व शराब, ये जो चश्मा जारी हुआ है गुसल के लिए है और पीने के लिए। जहन में आ रहा कि किस तरह अल्लाह ने अय्यूब की एड़ी से एक चश्मा निकलवा दिया جیسے ننھے اسماعیل کی ایڑیاں زمین پہ پڑی اور جبرائیل نے وہاں اللہ کے حکم سے پانی نکلنے میں مدد کی، اور آج بھی آپ اور میں اس کو زمزم کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ انیوژل واقعات ہیں. کچھ ظالموں نے، اللہ اکبر، اللہ ان کو اور ہمیں ہدایت دے، اس ساری روحانیت کو ایک طرف کر کے کہا، دیکھا قرآن ڈانس کرنے کی اجازت دیتا ہے. کدھر لکھا ہوا؟ یہ لکھا ہوا ہے، اور خود برج لکھ ان للہ و ان الیہ راجعون. کہتے نا کہ خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ حالات ہیں لوگوں کے. قرآن سے ہی لوگوں نے ہدایت کی گواہیاں بھی لی ہیں، اور اسی سے لوگوں نے گمراہی کے سرٹیفکیٹ بھی لیے ہیں. اور سیدھے سادھے لوگ بیچارے کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن ہی پیش کرتے ہیں. بھئی وہ قرآن کہاں کا پیش کرتے ہیں، کس کانٹیکٹس کا پیش کرتے ہیں؟ آپ جیسے بھولے لوگوں کو تو نہیں پتا نا. اس کے لیے تو آپ کو پہلے قرآن کا مزاج سمجھنا پڑے گا، 5-6 دفعہ اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر آپ ایسی خیانتوں کو جان جائیں گے. تو آپ کو اس وقت کہتے ہوئے یہ سنتے ہوئے بات کیسی لگ رہی ہے؟ کس صبر کی بات ہے، کس بیماری کی بات ہے؟ اور آپ دیکھیں یہاں اللہ نے باقی ساری ڈیٹیل چھوڑ کر صرف ان کی صحت یابی کی باتیں کر دی ہیں، کہ اپنا پاؤں تو ذرا ماریے. اور لوگوں نے اس کو کدھر لے لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ان کو بھی ہدایت دے. لیکن اصل میں اب بیماری دور ہونے کے اسباب شروع ہو گئے. پانی جو تھا وہ نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. مغتسل، غسل لفظ بھی اسی سے ہے، غسیل بھی اسی سے ہے، وہ جگہ جہاں نہایا جائے. خیر کیا ہوا تھا اس کو بعد میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ آیت 43، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید بھی دے دیے. سبحان اللہ. یعنی آپ کے گھر والے جو دور جا چکے تھے یا فوت ہو چکے تھے بچے، وہ بھی واپس آ گئے، یا اللہ نے ان کو مزید اولاد بھی دے دی. یہ کیسے ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بیماری دور ہوئی، آہستہ آہستہ سارے غم دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمتم منا، یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا اظہار تھا. وذکرا، اور یاد دہانی تھی. لیولی للباب، ہوش مند لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہوش کرتے ہیں. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جب صبر کیا تو اللہ نے سب کچھ واپس پہلے سے بھی زیادہ بڑھا کے دیا. میرے اور آپ کے لیے یہ بات ایک ذکرا ہے، اور ایوب کے لیے یہ رحمت تھی. لیکن ذکرا کس کے لیے ہے؟ جو اولی الالباب ہے. کہانی پوری نہیں ابھی ہوئی. اگلا حصہ، وخذ بیدک دغثا، اور لیجیے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا جھاڑو. دغثا، کہاں پڑھا یہ لفظ پہلے؟ اللہ کرے آپ کو فوراً اس لفظ سے پیچھے کے سارے لفظ یاد آ جائے. جی، سورت یوسف میں ادغاس و احلام. بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو درباریوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو الجھے ہوئے خواب ہے. تو وہی لفظ ہے یہاں دغثا، الجھی ہوئی چیزیں. جھاڑو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بڑے تنکے ہوتے ہیں نا، کوئی ایسے اسکیٹرڈ بکھرے ہوئے، مٹھا جس کو آپ پنجابی میں کہہ لیں یا اردو میں، وہی لفظ ہے. کہا ایک تنکوں کا مٹھا لے لو، جھاڑو لے لو. فدرب بھی، پھر اس کو ایک ضرب لگا دو. اور ولا تحنس، اور دیکھو قسم نہ توڑو. ہنس کیا ہوتا ہے؟ الہنس العظیم سورت واقعہ میں بھی آتا ہے، وہی لفظ ہے یہاں. قسم نہ توڑو، بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ کی بات ہے. ان وجد نہ ہو صابرن، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد، کتنا خوب بندہ تھا. آپ نوٹ کریں گے اس صورت میں نبیوں کے تذکرے میں نعم العبد کا ٹائٹل آ رہا ہے، جیسے ہر صورت میں کوئی ایک ٹائٹل ہوتا ہے. سلام ان کا لفظ کبھی ہوتا ہے، کبھی کچھ اور. کا بڑا ہی پیارا بندہ تھا، سلیو تھا میرا، بالکل جھکا ہوا تھا، بندگی کا خوبصورت نمونہ تھا. اور انہو اواب، اور بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا، وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا. یہ چار لفظوں کی کہانی ہے، اور اس کہانی کو انسان جب پڑھتا ہے تو وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کون تھے حضرت ایوب، اور ان کے ساتھ اس سارے انیوژل واقعات کیوں ہوئے. ہم سب کو تجسس ہوتا ہے، چاہے ہم بار بار پڑھ چکے ہوں. تو یاد رکھیے، جہاں لفظ ایوب آئے گا ہمارے کلچر میں، اس کے ساتھ ہی ایک لفظ آتا ہے صبر ایوب. حضرت ایوب کا صبر بہت معروف ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کی آزمائش مختلف طریقے سے کی تھی، تو ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے حالات تھے. کون تھے، کیا تھے، چند واقعات سنا دیتی ہوں، چند روایتیں क्योंकि अंबिया कराम के बारे में बात करते हुए डर बहुत लगता है। ऐसे ही लफाजी में पढ़कर कहानी बन गई तो कोई बात ऐसी इधर की उधर हो गई तो लेने के देने पड़ने की बात है। लेकिन हमें यह पता है कि कोई अनयूजुअल बात थी जरूर। अल्लाह की जात किसी की तारीफ करे ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लिहाजा हजरत अय्यूब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली बात यह है कि नबी थे, अल्लाह ताला की देन है, इनको मिली। चौथा मुकाम है कुरान का जहाँ हजरत अय्यूब का जिक्र हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सूरत निसा आयत 163 में इनका तस्करा हुआ था, फिर सूरत अलनाम की आयत 84 में, फिर सूरत अम्बिया की आयत नंबर 83 से 84 में था। और सूरत अम्बिया में हम तफसील से इनके हालात देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कैसे भेजा था एक खास मिशन की तरफ। दौलत भी थी, दुनिया की नेमतें भी बहुत थी, साबिर बहुत थे और शाकिर बहुत थे। और इसी तरह रिवायात में आता है कि एक दफा शैतान जो था उसको आर आ गई कि क्यों ना सब्र करेंगे, है ही सब कुछ, कौन सी कमी है इनकी जिंदगी में जो सब्र नहीं करेंगे। कहा नहीं, कुछ नहीं भी होगा ना फिर भी सब्र जरूर करेंगे। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, शैतान ने इनके जिस्म पर हाथ फेरा। यहाँ फिर वही चीज़ नोट कीजिए, जादू के सेमिनार में जो सीखी थी कि बहुत सारी बीमारियां असर उनका जिस्म पे दिखता है लेकिन उनकी जो वजह होती है वो रूह की कमजोरी होती है। जिस्म पर हाथ फेरा और जिस्म के ऊपर बीमारी आ गई, यानी अपने लफ्जों में ये समझ लीजिए कि स्किन डिजीज हो गई और बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए लेकिन क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है इतने दिन सेहत में था, क्या हुआ अगर चंद दिन बीमार हो गया, चंद महीने, चंद साल ही हुए हैं, क्या हुआ। इस बात पे वो खुशी महसूस करते थे कि मेरे रब ने मुझे बीमार करने का फैसला किया। देखिए ये सब्र का आला तरीन मुकाम होता है, सबसे आगे। पीछे आपको बताई थी ये बात सूरत फातिहा में भी और उसके बाद भी एक दफा जिक्र हुआ है कि कभी कभी इंसान आम हालात में खुशियों पे खुश होता है, दुख आता है तो उदास हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है कि जब गम आता है उस पर भी खुश होता है, फिर उसका अगला दर्जा क्या होता है कि गमों का इंतजार करने शुरू हो जाता है। फिर कहता है कोई बात नहीं, खैर है जो भी हुआ। लेकिन एक वक्त आता है कि गम ना आए तो फिर परेशान होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया। कहते हैं कि इनके सब्र का इम्तिहान क्या था, अल्लाह ने इनके इस इम्तिहान में पास होने की तारीफ किस तरह की कि ये कामयाब हो गए, सक्सेसफुल है, माल इनका बर्बाद हुआ, औलाद इनकी मर गई, जिस्म मरीज हो गया। कहते हैं जिस्म में सुई के नाके के बराबर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां बीमारी ना हो, सिर्फ दिल सलामत रह गया, क्योंकि दिल मुर्दा दिल नहीं से जिंदा कर दोबारा। जिंदगी मकसूद थी ना अल्लाह को इनकी, इसलिए दिल ठीक रहा। फकीरी और मुफलिसी का हाल क्या था कि एक वक्त का खाना पास नहीं था, कोई पास नहीं रहा, कोई खबरगिरी करता। एक बीवी थी जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था, अपने शौहर और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, लोगों का काम काज करती, अपना और अपने मियाँ का पेट पालती। कहते हैं कि 8 साल तक यही हालात रहे, हालांकि इनसे पहले इनसे बढ़कर कोई मालदार नहीं था, औलाद भी बहुत थी, दुनिया की राहत मौजूद थी, अब सब कुछ छीन लिया। हत्ता के लोगों ने शहर का कूड़ा करकट जहां डाला जाता है वहां आपको लाकर बिठा दिया। एक दो नहीं, 8 साल गुजर गए, अपने और गैर सब ने मुंह फेर लिया, कोई खैरियत पूछने वाला भी ना था। बस एक बीवी थी जो खिदमत करती थी और मेहनत मजदूरी करती थी। लेकिन देखिए अच्छा दिन था फिर वो गया, अब बुरे दिन आगे कहने को, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तदर्रो और जारी और कपकपाते हुए दिल से दुआएं करते हैं कि अन्नी मस्सनिय दुर्रु वअंता अरहमुर राहिमीन। हम होते कहते अल्लाह सेहत दे दे, इन्होंने क्या किया। बिल्कुल वही अंदाज जो ला इलाहा इल्ला अंता में हजरत यूनुस का अंदाज है। नबियों से दुआएं मांगना हम सीख ले, ए मेरे पालने वाले मुझे इस दुख ने तड़पा दिया, तू अरहमुर राहिमीन है। शिकवा नहीं है, गिला नहीं है, अपनी हालत का इजहार है। तकलीफ जिस्मानी है और अजाब रूहानी है, क्योंकि स्किन डिजीज ऐसी होती है कि जिसमें इंसान की फिर थोड़ी सी बेइज्जती भी होती है ना, लोग छोड़ देते हैं, तर्स खाते हैं, कोई पास नहीं बैठता। किस दिल से ये दुआ की हुई थी, अल्लाह ने इसको कबूल किया और ये सब आयतें जो हमने पढ़ी है उस वक्त की है। सिर्फ ऊपर से बीमारी नहीं दूर हुई, अंदर से जड़ें दूर हो गई, अल्लाह ने वही पानी को इलाज का जरिया बना दिया। आज कितना आम है पानी के साथ इलाज करो, वाटर थेरेपी। अल्लाह ने ऐसा चश्मा बना दिया, पियो भी और नहाओ भी। पीने से अंदर की बीमारियां दूर होंगी और नहाने से जाहरी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इब्ने जरीर और इब्ने भी हातिम में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाए, 18 साल तक अल्लाह के ये पैगंबर दुख दर्द में मुबतला रहे, अपने और गैर सब ने छोड़ दिया। हाँ, आपके मुखलिस दोस्त सुबह शाम खैरियत के लिए जाते थे। एक मरतबा एक ने दूसरे से कहा, मेरा ख्याल यह है कि अय्यूब ने अल्लाह की कोई बड़ी नाफरमानी की है कि 18 साल से इस बला में पड़ा हुआ है, अल्लाह इस पर रहम करे। ये लोगों की बातें ना, जो अक्सर हमारे पास भी लोग आते हैं और दुखी करके जाते हैं। अमूमन देखिए, लोग किसी बीमार को देखने जाते हैं, अव्वल तो सवाब की नीयत से नहीं जा रहे होते, कुछ और कर रहे होते हैं। लोग किस तरीके से वहां जाके मशवरे देते हैं, जूस बनाना था, सूप पिलाना था, दलिया बनाया, फिर उसका हाल पूछ के उस पर तबसरे, हाय तुम ऐसे, हाय फलां फलां, हाय रंग पीला हो गया, आंखें ऐसे ऐसे, लगता है कि बस मौत का पैगाम आने ही वाला है। कितनी गलत बातें होती हैं। इसी तरह के कुछ दुश्मन नुमा दोस्त थे जिन्होंने ऐसी बातें की और इनका दिल दुखा दिया और इनको तकलीफ दे दी। एक दूसरा शख्स भी बोला, उसने हजरत अय्यूब से ये बात भी कर दी कि लोग ऐसी बातें करें, इस पे कहते हैं कि इनको दुख हुआ। कहने लगे, मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, अल्लाह को पता है कि मेरी क्या हालत है। और इस तरह से ये बातें कहते हैं कि मैं तो ऐसा शख्स था कि दो लोग मेरे सामने झगड़ते थे और दोनों जब अल्लाह का नाम बीच में लाते थे तो मुझसे ये देखा नहीं जाता था कि लोग कैसे अल्लाह के नाम को मिसयूज करते हैं। एक तो मुजरिम है ना, और दोनों ही अल्लाह का नाम ले रहे हैं। मैं तो अपने पास से कुछ दे दिला कर इनके झगड़े को खत्म करता था ताकि मेरे रब के नाम की बेअदबी ना हो। अल्लाह अकबर। लेकिन देखिए, बीमारी अपने वक्त पे फिर जाती है। जब लोग आपको बातें करते हैं ना, फिर चोट पड़ती है अल्लाह के ताल्लुक पे। अच्छा, अल्लाह अब लोग मुझे बातें करने लग गए। लेकिन फिर जब बीमारी दूर हुई, उसके बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने इनको बिल्कुल दुरुस्त कर दिया, नूरानी चेहरे वाला, तंदुरुस्त। इनकी बीवी वापस आई, कहा, मरीज किधर गया? वहां तो कोई बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला जवान बैठा हुआ है। कहा, ये मैं ही अल्लाह की बंदी। और जब देखा तो वाकई हुआ है। इब्ने जरीर की रिवायत में आता है कि आपकी दो कोठियां थी, एक गेहूं के लिए और एक जौ के लिए, यानी दो घर थे बड़े बड़े जिसमें अनाज समेट के रखते थे। अल्लाह ने दो अबर भेजे, बादल भेजे दो, एक में सोना बरसा और एक कोठी अनाज की इससे भर गई, और दूसरे में से भी सोना बरसा और दूसरी कोठी इससे भर गई। वमा ज़ालिकल्लाहु भी अजीज। आप कहेंगे ये कैसे होता है? तो आप देखिए, वही पानी बरसता है, जमीन में जाता है और जमीनें फसलों की सूरत में सोना उगाती हैं, तो क्या आसमान से पानी पड़े तो सोना नहीं आ सकता? ये बस अल्लाह के मामले, इस पे बोला ना करें। बुखारी की रिवायत सुनेंगे तो फिर तो और ही मजा आएगा कि सब्र के इतने मीठे फल भी होते हैं। हमने तो सिर्फ सुना हुआ कि सब्र का फल बड़ा मीठा है, ये कौन सी मिठास है? बुखारी में आता है, हजरत अय्यूब नंगे होकर नहा रहे थे जो आसमान से सोने की टिड्डियां बरसने लगी। आपने जल्दी जल्दी इन्हें अपने कपड़े में समेटना शुरू किया तो अल्लाह तआला ने आवाज दी कि अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें गनी और बेपरवाह नहीं कर रखा? यानी आपको तो इन चीजों से मोहब्बत नहीं है, आप क्यों इनको समेट रहे हैं? आपने जवाब दिया, हाँ इलाही, बेशक तूने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मैं सबसे गनी और बेनियाज हूँ, लेकिन तेरी रहमत से बेनियाज नहीं हूँ, बल्कि इसका तो पूरा मोहताज हूँ। हमने दौलत सोने को क्या करना है, लेकिन अल्लाह दे तो दोनों हाथ से ले लो। इसकी तलब में हिलकान ना हो जाओ, बेचैन ना हो जाओ, हलाल से मिलता है ले लो और उसको फिर नेकियों का जरिया बनाओ। इस पे अल्लाह ताला ने फिर इनको नेक बदला और जजाएं दी और ये सब कुछ किया। अब ये औलाद का मामला भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, तो इसके बारे में भी सुन लीजिए। हसन और कतादा कहते हैं कि मुर्दा औलाद अल्लाह ने जिंदा कर दी और नहीं भी दी थी। ये था अल्लाह का रहम जो इनके सब्र इस्तकलार और रजू अल्लाह तवाजो और इनके सारी के बदले में अल्लाह ने दिया, और अक्लमंदों के लिए यही नसीहत है। और बास कहते हैं कि अल्लाह ने उससे ज्यादा भी औलाद दे दी, पहले जो थी फिर ये सेहतमंद हो गए, अल्लाह ने और बच्चे दिए। हम कहते हैं दोनों ही बातें मुमकिन है क्योंकि इन अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। अब ये आखिरी चीज ये है जो कहा कि झाड़ू लो और मारो, इसके बारे में क्या बातें हैं? बहुत सारी रिवायात इसके बारे में भी आपको मुख्तलिफ ही मिलती हैं, लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो बात अमूमन पेश की जाती है उसको अजीब सी कैफियत लगती है बयान करते हुए। लेकिन आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये बात सच है तो फिर वो क्या है कि बीमार शख्स बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। कहते हैं किसी बीमारी के दिनों में किसी बात पर बीवी से नाराज हो गए थे और गुस्से में कह दिया कि जब ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। अब ठीक हो गए, अब मारने तो नहीं थे, वो तो गुस्से की बात थी, लेकिन चूंकि कसम खा ली हुई थी तो अब अल्लाह ने उस कसम को पूरा करने का इलाज क्या बताया कि 100 तिनकों वाली एक झाड़ू लेकर आराम से एक बार उसको लगा दो तो तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। और ये अमल नबी सल्लम के दौर में भी हुआ। एक दफा एक बूढ़े शख्स ने जिना किया और बीमार कमजोर था कि अगर उसको 100 कोड़े मारे जाते तो वो मर जाता, तो आपने उसके लिए भी 100 तिनकों वाली झाड़ू मंगाई और हल्के हाथ से इसको मरवा दिया। ये मुस्नद अहमद की और इब्ने माजा की रिवायत मौजूद है। तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब कोई काम लेना होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सबाब भी पैदा कर देते हैं। अपने ऊपर लेके सोचते हैं थोड़ा सा, उनसे अब थोड़ा सा वापस आके देखिए हमारा कितना सब्र है। हजरत अय्यूब ने ना तो लोगों को बैठ बैठ के अपने दुखड़े सुनाए, ना हर वक्त वो अपने आप को ही चेक करते करवाते रह गए। देखिए मुझे तो अब ये बातें कहते हुए डर भी लगता है, मैं अल्लाह ना करे कभी किसी की बेइज्जती के लिए या मजाक के लिए ये बात नहीं कहती कि बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को दिखाना और बहुत चेकअप्स करवाना ये अपनी दुश्मनी है, लेकिन ये बात इतनी सच्ची है और अगर आप इस बात पे कान धरें तो आपके आधे से ज्यादा गम जो जिस्म की बीमारियों और तकलीफों के नाते से वो दूर हो जाए। और वो ये है कि आप अपने आप को अल्लाह के हाथों में डाल दीजिए। जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करेंगे अल्लाह ताला भी आपको उसी तरह डील करेंगे। बुखारी की रिवायत में आता है कि अनाइन दजन ने आबदी भी, हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, मेरा बंदा जो मुझसे गुमान करता है मैं उसके साथ वही करता हूँ। आप कहेंगे डॉक्टर पे जाऊंगी तो ठीक होंगी, तो आप वाकई फिर डॉक्टर पे जाएंगी तो ठीक होगी। आप कहते नहीं ये सुबह शाम की दुआएं पढ़ लेती हूँ तो ठीक हो जाऊंगी, आप कहते नहीं ये जड़ी बूटी इसको घोल के पी लेती हूँ फिर ही ठीक हो जाऊंगी। अल्लाह ने शिफा देनी है, देखिए आखिर में तो शिफा अल्लाह ने देनी है ना। तरीका आपकी मर्जी है, मुश्किलों वाला ले लें या आसानियों वाला ले लें। तो हम सब अल्लाह से ये दुआ करें कि मेरे मालिक तू मुझे भी ऐसी बेकार चीज़ों में ना जिंदगी गुजारने वाला दे। अब देखिए कितना वक्त लगता है, मैं बहुत दुआ करती हूँ अपनी सब बहनों और साथियों के लिए कि जो तकलीफों में और बीमारियों में बेचारे कई कई घंटे हॉस्पिटल्स में जाके बैठते हैं। मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला सेहत देने पे आता है, चंद मिनट नहीं लगते। डॉक्टर्स पहले अपॉइंटमेंट देते हैं, फिर उसके लिए बिठाते हैं, फिर इंतजार करवाते हैं, फिर कहते हैं अब दोबारा आना, फिर दोबारा आना, इतना वक्त लेके फिर एक मेंटली इंसान को फीलिंग मिल रही होती है तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम आम लोगों की तरह नहीं। इससे साइकोलॉजिकली इंसान डाउन होता है। जो बीमारी एक तरह की थी वो एक किस्म की अब रूहानी और ऐसी नफसानी बीमारी बनती है कि इंसान का मोरल डाउन होता है। तो अल्लाह से मांग के जितना कफायत कर सके इन चीज़ों में अपने आप को बचा के रखे। और जहर के इलाज करवाना सुन्नत है, बाज़ दफ़ा इलाज कराना फर्ज भी हो जाता है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप जान ले लें अपनी या घर बैठे रहे। मैं सिर्फ जो बात कहती हूँ कि वो ये है कि अपने आप को मसरूफ कर लें, जहन को मसरूफ करें। आप कहते हैं हमें तो काम ही इतने हैं, वो काम तो बहुत हैं लेकिन जहन मेरा खाली होता है। अपने बारे में सोचना छोड़ दे, जो होगा देखूंगी। दिल घट रहा है ना, मर जाऊंगी ज्यादा ज्यादा, कुछ नहीं होता। अभी जरा आगे थोड़ा और बर्दाश्त, थोड़ा और, फौरन टेस्ट करना, फौरन फिर उसको चेकअप करवाना, फिर फौरन डॉक्टरों से राबते करना, ये हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को भी खराब कर देता है। तो जिस्म को हमेशा अनटच रखिए ताकि कभी बीमारी की सूरत में दवा खानी पड़े तो अल्लाह के हुक्म से फौरन के फौरन दवाई असर करे। अमूमन मैंने लोगों को देखा है जो घबरा घबरा के एक जगह से दूसरी जगह, एक किस्म की इलाज से दूसरी किस्म के इलाज पे जाते हैं ना, फिर नुकसान ये होता है कि उसके बाद दवा असर नहीं करती और जो भी खा लो वो कहते हैं दवा तो बड़ी अच्छी थी, फलां को तो फायदा हो गया, मुझे नहीं हुआ और फलां फलां को ये नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें बचाए। आखिरी बात बस करके आगे चलते हैं और वो कहे कि अल्लाह ने ये क्यों कहा कि शैतान ने इनको नुसब और रंज पहुंचाया। तो मतलब ये है कि बीमारी की हालत में शैतान हजरत अय्यूब के दिल में वसवसे डालता है, इससे और ज्यादा तकलीफ होती है। और बस जो बात मैंने आपको ऊपर बता दी कि बाद ने कहा कि ये शैतान ही का एक किस्म का गुमान था कि हजरत अय्यूब को आजमाया जाए, तो अल्लाह ने उसकी तरफ नस्बत दी। लेकिन आप जानते हैं कि अच्छी या बुरी बात हर चीज अल्लाह ही के हुक्म से होती है। कभी भी इसको कोई एक बंदा सिर्फ किसी जादूगर या किसी शैतानी असर का नतीजा नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला ना चाहे वो काम नहीं होता।